महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 17। ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्षायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम्, महाधवलविख्यातम् महाबंधम नमाम्यहम्। यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें चौथी पुस्तक में तीसरा अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है, और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 71 पर, 71। जघन्य अनुभाग बंध के अंतर की प्ररूपना चल रही है, और अभी हम मार्गणाओं में देखते हुए अभव्य मार्गणा की बात पढ़ने जा रहे हैं। 71 पृष्ठ पर ये जो नया पैराग्राफ है, अभव्य जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। तो चार घाती कर्मों का जघन्य कौन करेगा? हाँ, मिथ्या दृष्टि स्वरूप। परंतु जैसे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में, या हमने मति अज्ञानी और श्रुतज्ञानी में संयम के अभिमुख वाले लिया था, वो यहाँ नहीं ले सकते, अभव्य है ना। फिर भी इन जनरल जिनका उनका जो बस विशुद्धि, उनके योग्य जो विशुद्धि अधिक होगी, तो ये सर्व विशुद्ध जीव लेना उसमें। हाँ, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन इसे ले लिया कि वो तो संगी पंचेंद्रिय करेगा, सर्व विशुद्ध वाला निकालो उसका स्वामित्व, अभव्य में स्वामित्व। सर्व विशुद्ध ही कहेंगे, मिथ्या दृष्टि दूसरा कुछ नहीं है। की बात उन्होंने इसमें कहा लिखा है, द्रव्य संयम मिल गया था। हाँ, 22 पेज पर। अभव्य जीवों में द्रव्य संयत जीवों के जगन्य स्वामित्व कहना चाहिए, पेज 22 नंबर। और गोत्र का तो 22 में उसकी बात नहीं करते,
ऐसा भी आपने देखा है ना।
शेष का ओघ के समान है बताया। परंतु द्रव्य ना, वो तो सम्यक तो इसके होता नहीं है। हाँ, तो उसको तो नहीं लेना है। मध्यम परिणाम में लिया, ओघ में गोत्र का जघन्य तो हम देखते हैं कि सातवें नरक में होता है, ओघ में जघन्य। देखो ओघ में देख लो, भव्यों की बात वहां थी, वो के समान भव्यों में देखा था, अभव्यों में यानी विभंग ज्ञानियों में और मत्य ज्ञानियों में तो घटित होगा वो के समान। सोलह पर मिला वो उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है, जगन ने चाहिए। अब शुक्ल लेशा वाले में क्या देखा था हमने?
आनंद
कल्प के समान दिखाया, मनुष्य गति के साथ ही हुआ वो तो उत्कृष्ट की बात हो गई ना। निगम है वो तो सम्यक तो के अभिमुख है, परंतु अपना तो जो अभव्य जीव है ना, ये सर्व विशुद्ध परिणाम से होंगे। यहाँ लिखा है विशेषार्थ अपने 71 पेज में देंगे। देखो अभव्य विशेषार्थ पढ़ लेते पहले। अभव्य जीव में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध सर्व विशुद्ध परिणामों से होता है। ये परिणाम एक समय के अंतर से भी होते हैं और अनंत काल के बाद भी होते हैं। इससे हाँ देखेंगे, हम पहले इसको पढ़ेंगे। इससे यहाँ इन कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल कहा है, तथा इन कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय होने से यहाँ इनके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर दो समय कहा है, शेष कथन सुगम है। जो ऊपर हमने पढ़ा था तीसरी लाइन में अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर दो समय है और शेष कर्मों का भंग ओग के समान बताया था। आप कौन सी बात बताना चाहते हैं अश्विन भाई? 235 जो उत्तर प्रकृतियों की, हाँ जघन्य की बात देखो, जगन्य की देख बता के मुझे बताना। तो उच्च गोत्र का नीच गोत्र का देख लो ना, हर एक प्रकृति का तो बताएंगे। 235 देखो मिथ्या तो सोलह कषाय वगैरह और ज्ञानावरण दर्शनावरण के लिए पंचेंद्रिय संगी जीव लिखा है, चार गति का पंचेंद्रिय संगी जीव जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष प्रकृतियों का भंग ओग के समान है, यानी निज गोत्र का ओग के समान होगा, परंतु अभव्य में वो कैसे होगा? निज गोत्र उसी के साथ लेना पड़ेगा, मिथ्यात्व वगैरह के साथ, यानी संगी जीव ही लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि ओग में तो निज गोत्र का जघन्य तो हमने देखा था कि वो सातवें नरक के नारकी को होता है। आते हैं अपने मूल पेश पर।
अपने वायुकायिक और अधिकायिक की अपेक्षा जो सर्वविशुद्ध अधिकायिक वायुकायिक होता है
अभव्य में सर्वविशुद्ध अग्नि
हमने देखा है ना कि वायुकायिक और अग्निकायिक को सर्वविशुद्ध
एकेंद्रिय में देखा
तो एकेंद्रिय भी अभव्य में आ जाएगा
आए क्यों नहीं आएंगे एकेंद्रिय भी अभव्य है परंतु पंचेंद्रिय जघन्य करेगा कि एकेंद्रिय जघन्य करेगा ये भी बात है ना मात्र एकेंद्रियों की बात है तो उसमें अग्नि का एक वायु का एक को लेना है परंतु जब सभी अभव्य तो सभी पंचेंद्रिय में भी है तो वहां तो पंचेंद्रिय को लेना पड़ेगा तभी तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल घटित हो रहा है कि अग्नि का एक वायु का एक को छोड़कर भी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन होगा क्या एकेंद्रिय के समान अभव्य की बात बताई थी वहां पर जहां हमने एकेंद्रियों की बात देखी थी एकेंद्रियों में कौन करता है जघन्य गोत्र का जघन्य ये पेज नंबर 61 पर है एकेंद्रियों में गोत्र कर्म का जघन्य एकेंद्रियों में रहते हुए असंख्यात पुद्गल परावर्तन का है क्योंकि बादर अग्नि का एक पर्याप्त वो सर्वविशुद्ध वाला करता है बात सही है आपके यहाँ एकेंद्रिय मार्गणा में भी असंख्यात पुद्गल परावर्तन का अंतर देखा क्योंकि अग्नि का एक वायु का एक को छोड़कर वाली बात है एकेंद्रिय में ही हाँ बादल अग्नि का वायु का एक पर्याप्त जो जघन्य करेंगे सर्वविशुद्ध यानी एकेंद्रिय में रहते हुए भी उसका असंख्यात पुद्गल परावर्तन अंतर है फिर भी ये बात नहीं सिद्ध होती है कि अभव्य में उसी को जघन्य लेना कि नहीं लेना यानी एकेंद्रिय में रखते हुए असंख्यात पुद्गल परावर्तन घटित करना है कि पंचेंद्रिय में फिर भी ये घटित तो हो ही रहा है असंख्यात एकेंद्रिय में हो या पंचेंद्रिय में हो चार घाती कर्मों का तो ठीक है वो तो सर्वविशुद्ध परिणाम संघ एकेंद्रीय के लेना पड़ेगा उच्च गोत्र को बांधने वाले का जघन्य हाँ नेचुरली वो ज्यादा होगा अनंत गुना होगा अग्नि का एक वायु का एक में जघन्य लेना पड़ेगा अब चार घाती कर्मों के लिए तो अग्नि का एक वायु का एक नहीं ले सकते तो संगी पंचेंद्रिय लेना पड़ेगा वो हमने देखा था ना द्रव्य संयत चार घाती कर्म के लिए द्रव्य संयत लिया था अभी आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 71 पर चल रही बात अपनी अभव्य जीवन की हम बात पढ़ रहे थे फिर दोबारा पढ़ेंगे पूरा 164 नंबर का पॉइंट अभव्य जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। हमने 22 पृष्ठ पर देखा था चार घाती कर्मों का जघन्य द्रव्य संयमी के होता है। अभी हमने गोत्र कर्म का जघन्य एक में वो अग्नि वायु का एक पर्याप्त बादर जीवों की सर्व विशुद्ध वालों की बात देखी थी, यानी वहां तो एक इंद्रिय में रहते हुए भी असंख्यात पुद्गल परावर्तन का अंतर पड़ता है, और यहाँ तो द्रव्य संयम में तो संगी पंच इंद्रिय मनुष्य है, उसमें तो अनंत काल का डिफरेंस पड़ेगा। गोत्र कर्म का उसमें क्यों नहीं लेना, क्योंकि वहां तो उच्च गोत्र बांधेगा उसका जघन्य, निज गोत्र के जघन्य से अनंत गुणा होगा। अब अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर दो समय है, क्योंकि वो सर्व विशुद्ध का जो परिणाम है लगातार दो समय तक रह सकता है। शेष कर्मों का भंग ओग के समान है, शेष में वेदिनी और नाम है और आयु है, तो वेदिनी नाम में हम देखते हैं जघन्य का अंतर कितना हो सकता है, एक समय का भी हो सकता है, अधिक से अधिक अंतर अभव्य जीवों में हाँ वेदिनी का वो बादर जीव करेंगे तो असंख्यात लोग, वेदिनी नाम का असंख्यात लोग, एक समय से असंख्यात लोग, और अजघन्य का
एक समय से चार
समय। एक से चार समय अब आयु का अभव्य जीवों में आयु का जघन्य कौन बांधेंगे, अभी वो तो लब्ध्य पर्याप्त संबंधी जो आयु बनती है, यानी वो मनुष्य तीर इंच बांधेंगे ना, नारकी तो नहीं बांधेंगे, देव नहीं बांधेंगे, तो मनुष्य तीर इंच बांधते हैं, तो आयु का जघन्य बंध किया तो असंख्यात लोग उसका रेफरेंस होगा, क्योंकि लौटकर उसी परिणाम में आने के अनुभाग बंध के टोटल परिणाम कितने हैं तो असंख्यात लोग होंगे, तो एक बार जघन्य बंध किया और वापस लौटकर अनंत यानी बहुत काल तक नहीं बांधा तो फिर लौटकर असंख्यात लोग प्रमाण काल में बांधेगा जघन्य आयु। और जघन्य के लिए नरक में भेजेंगे हाँ, यानी पूर्व कोटि के वंथर्ड पहले और फिर वहां तृप्ति सागर के लास्ट में। हमने अभी विशेषार्थ पढ़ा था, अब आगे की मार्गणा देखते हैं। क्षायिक सम्य दृष्टि जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर काल ओग के समान है। लक्ष्मी जी आप बताएंगे जघन्य का अंतर कितना होगा, अक्षपक्के होता है इसलिए जघन्य का अंतर नहीं है, अजघन्य का बहुत अच्छा उपशम श्रेणी में होगा, कितना हो सकता है एक समय से अंतर में, क्योंकि क्षायिक समय तो की मार्गणा चलती रहेगी अगर मरण होता तो भी, तो एक समय से अंतर में। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के, अभी गोत्र भी क्षायिक समय दृष्टि तो उच्च गोत्र ही बांधेगा, इनके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। एक साधिक 33 सागर क्षायिक संयुक्तों का काल लेना, इसलिए शुरू में और लास्ट में तो 33 सागर में से आया वो चौथा गुण स्थान उसका रहेगा ना 8 वर्ष तक, तो उसमें उसने वो साधिक में ले लेना उसका अजगन्य अनुभाग बंधका। जगन्य और उत्कृष्ट अंतर ओभ के समान है, क्या होगा?
1 से 4 समय।
हाँ, 1 से 4 समय। चार समय ने अंतर्मूर्त उपशम श्रेणी में शायद समय दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो अंतर्मूर्त अंतर पड़ेगा उसका अजगन्य का। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर 1 समय है और उत्कृष्ट अंतर 1 पूर्वकोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है, यानी मनुष्य ही उसका जघन्य आयु बांधेगा। किसको लेना? आयु की बात नीचे बताए क्या?
हेलो हेलो हेलो,
आवाज गया क्या? एक मिनट।
हेलो
हाँ, एक समय दृष्टि को हम देख लेते जरा आयु के, इन मनुष्य को ही लेना पड़ेगा यहाँ कि 3 इंच को भी ले सकते? स्वामित्व क्षायिक समित्व में जगन्य का स्वामित्व, उसमें आप अश्विन में आप उत्तर प्रकृति में देख लो, हम तब तक मूल प्रकृति में देख लेते हैं। एक समय तो की मार्ग में है 25 पान। हाँ, शायिक समय दृष्टि में अवधि ज्ञानी के समान बताए, आयु में चारों गति का जीव लिया है। शेष कर्मों का भंग अवधि ज्ञानी के समान बताया था, इन्हें अभिनिबोधिक वगैरह वगैरह उसमें 23 पेज पर लिखा है। एक मिनट, पहले मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। आयु के जो 23 पेज पर है, ऊपर से तीसरी लाइन अभिनिबोधिक ज्ञानी में है, आयु के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो जघन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर 4 गति का जीव उक्त कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है, इसलिए वो आप कौन से पैसे दिखाना चाहते
हैं?
एक मिनट, 235 निकालना, वहां देख लेते हैं। स्वामित्व और शायद सम्यक्त्व में अवधि ज्ञानी के समान है। एक मिनट, 55 जगन्य है, उत्कृष्ट है। हाँ, अभी आप कौन सी बात बता रहे थे? 235 पर वहाँ देख लेते हैं, वहाँ अवधि ज्ञानी के समान बताया है। अवधि ज्ञानी अभिनिबोधिक ज्ञानी को निकालना, 2-4 पृष्ठ पहले हो गया उसके। 228 देखो, मनुष्य आयु के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है मिला? 228 पेज पर नीचे का पैराग्राफ 4th लाइन, तो जघन्य पर्याप्ति से पर्याप्त परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला अन्यतर देव और नारके मनुष्यायु के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है, और देवायु के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? जघन्य पर्याप्त से पर्याप्त मध्यम परिणाम वाला 3 इंच और मनुष्य दोनों को लिया। हाँ,
उत्कृष्ट अंतर, उत्कृष्ट अंतर है ना, उत्कृष्ट अंतर के
हाँ, परंतु अभी हम यहाँ मूल प्रकृति में ही हमको देखना पड़ेगा, परंतु उन्होंने चारों गति के जीव ऐसे लिए थे वहां पर। तो यहाँ आयु का देवायु को ही लेंगे क्योंकि हमको उत्कृष्ट अंतर घटित करना है। हाँ तो छह महीने में कुछ कम, छह महीने में कुछ कम देवायु लेना ही है। तो बांधने वाला मनुष्य भी हो सकता है, तीन इंच भी है, ये तो हम अभी नहीं कहेंगे क्योंकि शाही समय दृष्टि भूमि का तीन इंच भी तो होता है। वहां छह महीने होता है तो तीन इंचों में वो रोल आउट कर दिया है ना, तो मनुष्य को लेना है। तो हमने अभी बात पढ़ी आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल ओघ के समान है। ये तो साधिक 33 सागर हमने पहले देखा था। विशेषार्थ, चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध की अंतर प्ररूपना जिस प्रकार ओघ में कही है वह क्षायिक समेत में अविकल बन जाती है, इसलिए यह कथन ओघ के समान कहा है। क्योंकि चार घाती कर्मों का तो जघन्य क्षपक के होता है तो जघन्य का अंतर नहीं है, अजघन्य तो उपशम श्रेणी में होता है तो एक समय से अंतर्मुहूर्त हो सकता है। वेदनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध परिवर्तमान मध्यम परिणामों से और गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध असंयत समय दृष्टि अवस्था में संकलेश परिणामों से होता है। यहाँ ये परिणाम एक समय के अंतर से भी हो सकते हैं और साधिक 33 सागर के अंतर से भी हो सकते हैं। यही कारण है यहाँ इन तीनों कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर कहा, इनके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर, इनके जघन्य अनुभाग बंध के जघन्य और उत्कृष्ट काल को ध्यान में रखकर कहा है। क्यों कहा वो, क्या उसको कुछ बात नहीं की, हमने देखा था एक समय से अंतर्मुर्त उपशम श्रेणी में, दो समय क्यों गए? और वो भी मध्यम परिणाम है, दो समय भी वैसे नहीं होगा परंतु यह अंतर्मुहूर्त लेना है। यानी यहाँ जो लिखा ना उन्होंने अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर, इनके जघन्य अनुभाग बंध के काल को ध्यान में रखकर ये बात घटित नहीं होगी, उपशम श्रेणी में उत्कृष्ट अंतर घटित होगा। हाँ, अजगन्य का उत्कृष्ट अंतर उपशम श्रेणी में होगा। किसको? देखो इनके अजघन्य अनुभाग का ऐसा लिखना है, जघन्य और उत्कृष्ट अंतर, अभी उत्कृष्ट अंतर के बाजू में लिखो उपशम श्रेणी में, और जघन्य अंतर के जघन्य अनुभाग बंध के जघन्य काल को ध्यान में रखकर कहा, वहां और उत्कृष्ट निकाल लेना उसमें से। अब हम आगे की मार्गणा देखते हैं। ये आयु कर्म का अंतरकाल सुगम है, अभी हमने देखा पहले वेदक समय दृष्टि जीव में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। हाँ, एक क्षपणा कर दर्शन मुख की क्षपणा वाला लेना। वो एक बार ही जघन्य होगा उसका, और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है। आपका प्रश्न है वैदक समय दृष्टि में क्षपक श्रेणी के सम्मुख परिणाम होगा कि नहीं होगा। वैदक समय दृष्टि रहते हुए वो क्षपक श्रेणी के सम्मुख होगा ही नहीं, उसको क्षय किए बिना वो क्षपक श्रेणी के सम्मुख नहीं हो सकता। और उसका क्षय करते समय जो तीन करण परिणाम हुए हैं वही उसके लिए उत्कृष्ट विशुद्धि है। अनिवृत्तिकरण के अंत में उसने जघन्य अनुभाग बंद किया और फिर वो कृतकृत्य वेदक हो गया, तो फिर अजघन्य हुआ। वेदक रहते हुए अजघन्य हुआ, उसको कृतकृत्य वेदक कह रहे हैं ना हम, ख्याल में आई बात? कृतकृत्य वेदक होने के एक समय पूर्व की बात है, तब उसने वो जघन्य अनुभाग बंद किया, वहां उसकी विशुद्धि मैक्सिमम थी, और फिर अजघन्य किया, तो जघन्य एक समय में हुआ बीच में, तो अजघन्य का एक समय अंतर हुआ, जघन्य का अंतर नहीं होगा। वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागर है। ये तो मध्यम परिणाम में हो सकता है। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 4 समय है, यानी लगातार 4 समय तक वो जघन्य करेगा। वेदक समय दृष्टि इसलिए उपशम श्रेणी की बात यहां नहीं घटित होगी। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का भंग वेदनीय कर्म के समान है, वही कुछ कम 66 सागर उसका जघन्य का उत्कृष्ट अंतर, और अजघन्य अनुभाग बंध का भंग ओघ के समान है। कितना होगा? 33 सागर होगा ना। वेदक समय दृष्टि भी तो 33 सागर क्या भी बांध सकता है। गोत्र कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। आप बताएंगे मंजू जी, मंजू गोत्र कर्म का जघन्य, जघन्य भी अजघन्य भी दोनों। परंतु वो जघन्य उसका वेदनीय के समान है, यानी उसने एक बार जघन्य करके फिर अजघन्य किया, और फिर 66 सागर के लिए अगर करना है तो क्या देवाई अजघन्य में अजघन्य का उत्कृष्ट ओघ के समान है, और जघन्य का उत्कृष्ट कुछ कम 66 सागर है। यहाँ जघन्य अनुभव, हाँ हाँ उल्टा है। हाँ, गोत्र कर्म का जो जघन्य है इसीलिए वो अंतिम समय है, अंतर नहीं होगा। बराबर है, उच्च गोत्र में जघन्य अनुभाग बांधेगा, कब, जब संकलेश ज्यादा है, मिथ्यात्व के सन्मुख वाला है, अंतिम अनुभाग बंध में स्थित है और वो जघन्य अनुभाग बंध कर रहा है। अभी वो मिथ्यात्व में जाएगा तो उसकी मार्गणा पलट जाएगी, वेदक सम्य दृष्टि नहीं रहेगा। वो विशेषार्थ जो वेदक सम्य दृष्टि जीव सर्व विशुद्ध अप्रमत्त संयत होता है, उसी के चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध होता है। इसलिए यहाँ चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध के अंतर का निषेध किया है तथा इसके चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय होने से यहाँ अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय कहा है। यहाँ वेदनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध परिवर्तमान मध्यम परिणामों से होता है, यह विशेषार्थ की बात पढ़ रही हूँ। यथा ये परिणाम कम से कम एक समय के अंतर से और अधिक से अधिक कुछ कम 66 सागर के अंतर से उपलब्ध हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागर है। इनके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर चार समय, ये मध्यम परिणाम है। लगातार जघन्य चार समय तक हो सकता है। यहाँ गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग का बंध मिथ्यात्व के अभिमुख हुए जीव के हो सकता है, इसलिए इसके जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध के अंतर का निषेध किया है। शेष कथन सुगम है। अजघन्य या तो जघन्य के करेगा वहाँ होता है अजघन्य का अंतर, या तो उपशम श्रेणी में, या उपशम श्रेणी भी संभव नहीं है, वेदक समय दृष्टि है इसलिए। और जघन्य तो अंतिम समय में होता है मिथ्यात्व के जाने के पहले, इसलिए अजघन्य का अंतर घटित नहीं हो रहा। उपशम समय दृष्टि जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतर काल नहीं है, क्योंकि उपशम समय दृष्टि में जघन्य कब होगा? उपशम समय दृष्टि में, हाँ, उपशम श्रेणी में दसवें के अंत में, यानी नौवें में मोहनी का और दसवें में तीन घाती का, उसका उपशम समय तो भले नीचे आता है, फिर भी दोबारा श्रेणी चढ़ने में उसको दोबारा उपशम समय तो करना पड़ेगा। एक ही बार उपशम समय तो किया द्वितीय उपशम, उसमें दो बार श्रेणी नहीं चढ़ना होगा, बीच में वो वेदक होके फिर द्वितीय उपशम करेगा, इसलिए अंतर नहीं बताया, इसलिए जघन्य का अंतर नहीं है। उपशम सम्यक्त में गोत्र कर्म का जघन्य कब होगा? मिथ्या तो कैसे अनुमुख वाले होगा, तो उसकी भी मार्गणा पलट जाएंगे। अब अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर काल ओग के समान है। लक्ष्मी जी आप बताएंगे कितना हो सकता है?
एक समय,
हाँ, एक समय से अंतर मुक्त, क्योंकि समय दृष्टि तो उच्च गोत्र भी बांध रहा है, उसका अजघन्य कब हो सकता है? या तो जघन्य करेगा तभी, परंतु अंतर नहीं घटित होगा, अभी हमने देखा था, तो श्रेणी में होगा। एक समय में मर गया तो भी वो द्वितीय उपशम वाला द्वितीय उपशम ही रहा, उसकी मार्गणा चल रही देव में जाते हुए भी, तो एक समय का अंतर होगा। और अधिक से नहीं मरेगा तो पूरा अंतर घटित हुआ, तो एक समय से अंतर्मूर्त होता है। वेदनी और नाम कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, क्योंकि ये मार्गणा अंतर्मूर्त की है और उसके जघन्य और अजघन्य होता रहेगा, मध्यम परिणाम की बात है ना। विशेषार्थ उपशम समय दृष्टि के चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध उपशम श्रेणी में चढ़ते समय और गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध मिथ्यात्व के अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभाग बंध के अंतर काल का निषेध किया है।
यहाँ ये बात नहीं क्लियर हो रही है कि दोबारा यानी उपशम सम्यक तो रहते हुए द्वितीयोपशम रहते हुए दोबारा श्रेणी नहीं चढ़ेगा, बीच में वेदक होके फिर उसको द्वितीयोपशम करना पड़ेगा। वेदनीय और नाम कर्म का जघन्य आपका प्रश्न है, प्रथम उपशम वाले के होगा कि द्वितीय उपशम वाले के, किसी के भी होगा परंतु मध्यम परिणाम में होगा। तो द्वितीय उपशम वाला लौट के चौथे क्यों उतर कर वो चौथे तक भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि द्वितीय उपशम वाले की विशुद्धि ज्यादा है। हम देखते हैं ना द्वितीय उपशम श्रेणी चढ़ता है वो तो करण परिणाम है, परंतु लौट कर नीचे आया है छठे तक आया है छठे के बाद चौथे तक गया है तो ऐसा नहीं कह सकते हम। वेदिनी नाम कर्म की बात हमने देखी मध्यम परिणामों से होता है और ये परिणाम कम से कम एक समय के अंतर से अधिक अंतर मुहूर्त के अंतर से संभव है, इसलिए तो इनके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है तथा इनका अजघन्य अनुभाग बंध कम से कम एक समय तक और उपशांत मोहगुण स्थान की अपेक्षा अधिक से अधिक अंतर्मूर्त काल तक नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभाग बंध का भी जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा था। ये अपने ऊपर दिखाई था और जगन्य के लिए साधन सम्य दृष्टि जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के गोत्र नहीं चाहिए आयु वेदनी आयु नाम गोत्र कर्म का जगन्य अनुभव का अंतर नहीं है। हाँ ऊपर लिखा है चार घाती को जघन नहीं समा उपकस अंतम उत्तम आगे गोत्र कर्म अलग से लिया, फिर आगे तो गोद का जघन्य अजघन्य नथ्य अंतरंग लिखा है। गोत्र कर्म का जघन्य मिथ्या तो के सम्मुख वाला नीचे गोत्र बंधेगा संकलेश ज्यादा होगा तो उसके 25 पान वही वही 25 25 सासाधन सम्य दृष्टि जीवों में मिला सबको चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, सर्व विशुद्ध अन्यतर चार गति का जो उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है, वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी तो ये तो मध्यम परिणाम वाला है, आयु कर्म का बंधन नारकी के समान है, गोत्र कर्म के जघन्य का कौन है साकार जागृत और सर्व विशुद्ध सातवीं पृथ्वी का नारकी जीव, क्योंकि वहां पहले और दूसरे गुणस्थान में तो नीच गोत्र ही बंधेगा। देखो यहाँ सर्व विशुद्ध कौन है सातवीं पृथ्वी का नारकी ये पेज नंबर 25 पर हमने देखा था। यह दो बार लिखा क्यों फिर
बराबर
हाँ, इन बिटवीन कभी भी अगर किया है तो चार जाति कर्म गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाव बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूल बताए और अजघन्य का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर दो समय पूरा पढ़ लेते फिर वेदनीय आयु और नाम कर्म के जघन्य अनुभाव बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है क्योंकि एक ही अपकर्ष काल लेना है वहां पर दो बार तो नहीं होगे और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर चार समय है क्योंकि लगातार जघन्य करने का काल लेना है। गोत्र कर्म के जघन्य विशेषात में कुछ होगा तो देखेंगे। गोत्र कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर काल नहीं है। विशेषार्थ पढ़ेंगे पहले। सासाधन समय दृष्टि जीवों में चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध चारों गतियों में सर्व विशुद्ध परिणामों से होता है। यतः ये परिणाम कम से कम एक समय के अंतर से और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त के अंतर से उपलब्ध होते हैं। इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है। इनके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर दो समय है यह स्पष्ट ही है क्योंकि सर्व विशुद्ध परिणाम लगातार दो समय तक हो सकते हैं। वेदिनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध चारों गतियों में मध्यम परिणामों से और आयु कर्म का जघन्य अनुभाग बंध पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान मध्यम परिणामों से होता है। यतः यह परिणाम भी कम से कम एक समय के अंतर से अधिक अंतर्मूर्त के अंतर से होते हैं। इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है। इन्होंने गोत्र कर्म की बात ही नहीं उठाई ना अलग से ना चाहते रहती कर्मों के साथ। हाँ, 424 देख लेते हैं। सासाधन सम्यक्त्व में गोत्र कर्म यहाँ पर भी परिवर्तमान है ना क्योंकि यहाँ उच्च और नीच दोनों ही है। सातवें में परिवर्तमान नहीं है इसलिए वो सर्व विशुद्ध वाला लिया वहां क्योंकि सर्व विशुद्ध होते हुए भी वो नीच गोत्र ही बांधेगा। हाँ वो तभी तो ये जघन्य हो सकते हैं ना। किसमें अच्छा गोत्र कर्म के जघन्य में अंतरकाल इसलिए नहीं बताया। हाँ यहाँ सातवें नरक के नारकी में देखो क्या है। अंतर में सातवें नरक के नारकी में देखना है। यह सामान्य से देखो 371 पेज पर सभी प्रकृतियों का ओघ से जघन्य बता रहे हैं। वहां हम नीच गोत्र का या उच्च गोत्र का अलग अलग देखेंगे। कहां पर साता के साथ लिया है क्या 372 पर मिला आपको। अच्छा मैं 71 पर देख रही थी नीच गोत्र का कहीं 72 में चौथी लाइन मनुष्य गति गत्यानुपरी और उच्च गोत्र के जघन्य अंतर एक समय है, जघन्य का भी और अजघन्य का भी। उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है, यानी अग्नि का एक वायु का एक में गया इसलिए लेना पड़ेगा। नीच गोत्र के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट अंतर अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। हाँ वो तो उन्होंने नीच गोत्र का जघन्य सम्यक के सन्मुख वाला लिया सातवें नरक में, वहां सासादन की बात नहीं थी, ओग में गुण स्थानों की चर्चा कर किए बिना की बात थी, तो अंतर्मुड के अंतर से फिर दोबारा वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है और उत्कृष्ट अंतर अर्ध पुद्गल है। वहां तो घटित हुआ पर सासादन में हमको घटित करना था, जो अभी हमने पढ़ा था ना, अभी आपने कौन सा पृष्ठ 424 बताया था, सासादन में आपने जो बताया या फिर से कुछ बताया कि सातवें नरक में ऐसा ध्रुवबंदी की
तो ध्रुवबंदी का विशुद्धि तो हो सकती है दो बार, तो ध्रुवबंदी का भी अंतर हो जाएगा।
ध्रुवबंध वाली प्रकृतियों के जगन और अजगन अनुभव करने का अंतर कारण नहीं है।
ध्रुवबंदी वाली होगी ना चार बंदी का, तो वो ध्रुवबंदी वाली तो उसका अंतर पता है यहाँ पे, और ये नहीं बताया।
सासादन में वहां द्रोबंदी का अंतर नहीं बताया था, है ना?
और यहाँ पे तो अपनी जो सेलिब्रिटी थी उसमें
दोनों ही बातें बताई वहां पर। देखो विशेषार्थ 424 का देखा, सासादन सम्यक क्रम निकालना 424 नीचे का पैराग्राफ। सासादन सम्यक में चारों गति के मिला मंजूर, सर्व विशुद्ध जीव के पांच ज्ञानावरणादि का और चारों गति के सर्वसंक्लिष्ट जीव के पंचेन्द्र जाति आदि का जघन्य अनुभाग बंध होता है, अभी उसकी बात छोड़ो, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है।
तो
एक मिनट, पुरुष वेद आदि का जो जघन्य स्वामी तो बताया उसके अनुसार इनके जघन्य अनुभाग बंध का भी अंतरकाल संभव नहीं है, इसलिए इसका निषेध किया है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियां है इसलिए इनके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त का है, यानी वहां तो वो ध्रुवबंदी है, उसके लिए ध्रुवबंदी का निषेध किया, और परावर्तन प्रकृतियों में तो और जगन्य के लिए एक समय से अंतर्मुख कहा है।
नहीं,
यहाँ उल्टा बताया, ध्रुवबंदी में अंतर नहीं है बताया है।
हाँ।
और परावर्तमान में अंतर हो सकता है कहा। आपका कहना है अभी जो हम मूल प्रकृतियों में बता रहे हैं और वहाँ तो वो एक एक प्रकृति अलग लेना है। गाती कर्मों में तो ज्ञानावरण के सभी है, दर्शनावरण के, हाँ सभी ध्रुवबंदी वाले ले हैं। हाँ और जगन्य का भी एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त का है और अजगन्य के लिए नहीं, वो कभी भी हो सकते, ये बात यहाँ ली है ना। वेदिनी नाम और गोत्र के लिए एक समय का अंतर उत्कृष्ट अंतर अंतर्म वो तो ठीक समझे क्योंकि वो तो मध्यम परिणाम है और अजगन्य अनुभाग बंद का जगन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर चार समय। अब गोत्र कर्म के जगन्य रजगन्य अनुभाग बंद का अंतर का नहीं है, यानी ये जो 424 पेज से उल्टा पुल्टा होता है, यानी पृष्ठ 424 पर ध्रुवबंदी के अंतर का निषेध किया है। बस यहाँ एक क्वेश्चन लिख के रखो, पेज वाला पहले भी कोई हमें ऐसा ही प्रश्न आया था ना, वो तो हमने करेक्ट किया था उसको। अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ क्वेश्चन मार्क रखेंगे यहाँ पर। अब विशेषार्थ शासन सम्य दृष्टि जीव में चार घाती कर्मों का जगन्य अनुभाग बंद चारों गतियों में सर्व विशुद्ध परिणामों से होता है। यतः परिणाम कम से कम एक समय के अंतर से अधिक अंतर्मूर्त के अंतर से उपलब्ध होते हैं, इसलिए यहाँ इनके जगन्य अनुभाग बंद का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है। इनके अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर दो समय है, यह स्पष्ट ही है। वेदनी और ये हमने पढ़ा था, वेदनी और नाम कर्म का जगन्य अनुभाग बंध चारों गतियों में मध्यम परिणामों से और आयु कर्म का जगन्य अनुभाग बंध पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान मध्यम परिणामों से होता है। यतः परिणाम भी कम से कम एक समय के अंतर से अधिक अंतर्मूर्त के अंतर से होते हैं, इसलिए यहाँ इनके जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है। शेष कथन सुगम। सम्यक मिथ्यादृष्टि जीवों में वेदनी और नाम कर्म का भंग सासाधन सम्य दृष्टि जीवों के समान है। शेष कर्मों के जगन्य और अजगन्य अनुभाग बंध का अंतर का नहीं है। अब इसमें तो स्पष्ट समझ में आता है क्योंकि इसका जगन्य कब होगा, चार घाती कर्मों का जगन्य तो सम्यक होते समय और बाकी गोत्र का जगन्य तो मिथ्या, तो कैसे निकल क्योंकि वो उच्च गोत्र बांध रहा है। देखो विशेषा सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव के चार घाती कर्मों का जगन्य अनुभाग बंध सर्व विशुद्ध सम्यक्त के अभिमुख हुए जीव के तथा गोत्र कर्म का जगन्य अनुभाग बंध उत्कृष्ट संकलेश वाले मिथ्यात्व के अभिमुख हुए जीव के होता है, इसलिए इनके जगन्य और अजगन्य अनुभाग बंध के अंतर काल का निषेध किया है। ये तो समझ में आवे ना, आसान है। वेदनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंद परिवर्तमान मध्यम परिणामों से होने के कारण इनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग का अंतरकाल सासाधन समय दृष्टि के समान बन जाने से यानी जघन्य का अंतर एक समय से अंतर्मुख और जघन्य का एक समय से चार समय वह उनके समान कहा है। तो हम सासाधन में तो यही सोच सकते हैं कि वो सर्व विशुद्ध कब होगा, तो जब उपशम समय से गिर कर आया है तभी पहले समय में से। फिर भी स्वामित्व में उसको नहीं लिया है, स्वामित्व में भी नहीं लिया है उसको, क्योंकि यहाँ देखो दूसरा गुण स्थान है तो नीच गोत्र भी बन रहा है उच्च गोत्र भी बन रहा है। हाँ वहाँ नीच गोत्र बन देगा तो सातवें नरक का सर्व विशुद्ध लेंगे। ये हम अपनी ओर से नहीं कहते परंतु क्योंकि यहाँ उसको गठित किया है चार गति कर्मों के लिए, हम अपनी ओर से कोई रूल नहीं बनाएंगे, हम तो बस कहाँ क्या लिखा है उसको देखेंगे और उसकी क्यों लिखा है उसका विचार करेंगे, पर हम डायरेक्ट उसका नियम बनाए जाते हैं तो कहीं गड़बड़ हो जाएगी। अभी अभी तो थोड़ा थोड़ा समझने लगे क्यों अनुभव की बात किसका हाँ पर्याप्ति से पर्याप्त हो गए। ये जघन्य पर्याप्ति और उत्कृष्ट पर्याप्ति ऐसा लेना है कि जो पर्याप्त होने का जो काल है उसके लिए कुछ अपर्याप्तों के लिए अपर्याप्ति से निवृत्त मान लिखा है, जघन्य अपर्याप्ति से निवृत्त मान लिया और पर्याप्तों के लिए जघन्य पर्याप्ति से निवृत्त मान लिया। अपर्याप्ति मान उसको तो कभी पर्याप्ति होने वाला नहीं है परंतु उसका भी टू थर्ड काल भी दी जाए और वन थर्ड बाकी है तब उसका आयु का बंद होगा, ऐसी कोई अपेक्षा होनी चाहिए। बाकी देखेंगे कभी उसके यहाँ तक तो उन्होंने कुछ उसको एक्सप्लेन नहीं किया। ये हो गया ना अपना समय विशेषार्थ। अब संगी जीवों में पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के समान भंग है, क्या होगा मंजू आप बताना है। चार घाती कर्मों का बताओ, जघन्य का अंतर कितना होगा, नहीं होगा वो क्षपक्य होता है और जघन्य का श्रेणी में एक समय से अंतर मन, बहुत अच्छा। गोत्र का जघन्य कब होगा संगी जीवों में, सातवें नरक का नारकी सम्यक्तु के सम्मुख वाला उसको लेना संगी में और फिर उसका जघन्य का अंतर कितना होगा, मिनिमम अंतर्मूल और मैक्सिमम कुछ कम अर्ध पुद्गल पर आओ क्योंकि सातवें नरक का नारकी सम्यक्तु के अभिमुख एक बार उसने सम्यक्तु प्राप्त किया, अब दोबारा सातवें नरक में जाकर उसको सम्यक्तु प्राप्त कराना है। अभी जो कुछ कम करना है कुछ कम कर दो कि वहां से निकल कर तो मोक्ष में नहीं भेज सकते, वहां से तीन इंच में जाएगा एक दो चार भाव करके मनुष्य में आएगा, फिर वो ये था युग काल में तो ये हमने देखा था गोत्र का बात। देखिए वेदनीय नाम के लिए क्या होगा, मध्यम परिणाम में होता है जघन्य संगी जीव, हाँ तो जघन्य का अंतर एक कम से कम एक समय चार समय अजघन्य के लिए, वो भी चार समय नहीं लेना अंतर्मूर्त लेना उपशम श्रेणी में। तो जघन्य का अंतर देखना है किसका, वेदनीय नाम का जघन्य किया उसका उत्कृष्ट अंतर। बोलो अश्विन भाई संगी में हाँ अजर सागर है ना, सौ सागर पृथक पूर्व कोटी संगी में, संगी में कितने सौ सागर पृथक, हाँ हाँ, पर अकेला संगी जीव, संगी में पर्याप्त भी है अपर्याप्त भी है। आप में क्या लिखा है संगी जीव? संगी में
पर्याप्त है,
संगी जीव में 100 सागर। पंचेंद्रिय पर्याप्तों के समान है, मन संगी में केवल पर्याप्त नहीं लेना है, पर्याप्त पर्याप्त पंचेंद्रिय पर्याप्त का, पर संगी में भी उतना ही है। पंचेंद्रिय पर्याप्त कहते वहां संगी असंगी दोनों आ गए, परंतु पर्याप्त आ गए। अब यहाँ संगी पंचेंद्रिय कहने से संगी में पर्याप्त और पर्याप्त दोनों लेना, फिर भी उसका काल उतना ही होगा 100 सागर तक। हाँ, और संगी में भी उतना ही बताया, वही बात बताया। ये किसका हुआ? जघन्य का उत्कृष्ट अंतर हुआ वेदनी और नाम के लिए, गोत्र की बात हमने देखी थी। और जघन्य का एक समय से अंतर हुआ, अब आयु रहेगी संगी जीव में, आयु जघन्य आयु
एक समय से,
अभी वही उसका 100 सागर पृथत्व का अंतर ले सकते हैं ना, एक बार जघन्य बांध दी। हाँ, अजघन्य का होगा, नहीं नहीं अजघन्य का भी साधिक 33 सागर होगा। विशेषाद में लिखा है असंगी में होगा, असंगी में होगा, क्योंकि असंगी अधिक से अधिक हो तो। जघन्य बंद किया तो एक समय के रिफरेंस से किया, और उसके काय स्थिति में कुछ कम करना। हाँ, हो गया ना सभी? देखे और जघन्य के लिए एक समय और साधिक 33 साल, ये तो हमने देख लिया। असंगी जीवों में 4 घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। वो असंगी पंचेंद्रिय करेगा क्या है? बादर करेगा कि बादर करेगा तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कैसे होगा? पंचेंद्रिय को करना पड़ेगा ना, और गोत्र कर्म का जघन्य तो सर्व विशुद्ध अग्नि का एक वायु है, उसमें भी असंख्यात पुद्गल परावर्तन घटित होगा। ये बादर अग्नि का एक लिया, बादर अग्नि वायु पर्याप्त। असंगी अभी कौन से गति के साथ आप सोच रहे हैं? अच्छा, वो सर्व विशुद्ध है, बस इतनी बात है, उससे बंधेगा देवगति। तो देखो, वो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन देखा, अजगन्य अनुभाग बंध का, ये बातें ना सन्निकर्ष में देखनी पड़ेगी हमको, होगा
इसके
बाद, इसके दूसरे पुस्तक में होगा,
इसके आगे
है क्या? उत्कृष्ट जगन्य का सन्निकर्ष, हाँ मूल प्रकृतियों का सन्निकर्ष तो इसी में होगा। अच्छा अच्छा, वो उत्कृष्ट का होगा, जगन्य का देख लो अभी, अरे अश्विन भाई को बहुत ये हो रहा है ना, असंगी में देख लो। एटी टू को नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय है, ये तो 78 पर देखते हैं। असंगी की बात नहीं है, इसी प्रकार वगैरह वगैरह कहीं पर होगी बात। उग के समान संगी आहारक वगैरह को लिया, तीन विषय असंगी यहाँ लिया, देखो असंगी 78 पेज लिया, चौथी लाइन में इसी प्रकार असंगी के जानना चाहिए, परंतु वो आगे क्या लिखा उसमें, बंदे तो मूल प्रकृति में लिया है, अभी उत्तर प्रकृतियों का सन्निकर्ष आपको आगे के हुआ, जरा रुकना पड़ेगा, मूल प्रकृतियों की तो बांधेगा ही ना, बांधेगा मूल प्रकृति तो बंध ही रहा है, उनका प्रश्न तो कौन सी गति बांध रहे उस समय, वो परस्थान सन्निकर्ष, हाँ कल देख के हमको बताना, जिसका प्रश्न है उसी को देखना पड़ेगा, अपने को रेडीमेड मिलेगा। लक्ष्मी बहन आपके लिए उपाय बता रही, प्रश्न पूछते नहीं नहीं वो तो हाँ ना, अभी आपने प्रश्न पूछा तो हमें जिज्ञासा हो गई है, अभी उसका उत्तर भी चाहिए आपसे ही चाहिए। कल न्यूज़पेपर के बदले ये पढ़ गया ना, अभी हम देखो देखो ये हम ऊपर पढ़ रहे थे, असंगी की बात पढ़ रहे थे, ये असंख्यात पुद्गल परिवर्तन की बात हमने देखी थी, और उसमें अजगन्य अनुभाग बंध का, चार घाती का और गोत्र के अजगन्य अनुभाग बंध का, जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर दो समय, क्योंकि वो सर्व विशुद्ध वाला जीव लिया, वेदनीय आयु और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल ओह के समान है, वेदनी आयु का तो मध्यम परिणाम में होता है, परंतु उसमें तो असंख्यात लोक का डिफरेंस पड़ता है, हमने देखा था एक समय से असंख्यात लोक, असंख्यात लोक क्योंकि वो बादर करेगा, वो भी करता है, भी लगाया था बादर एक ही उसका जघन्य करेगा, और सूक्ष्म में चला जाएगा तो नहीं करेगा, आयु के जघन्य में हमने ऐसा देखा था कि उसके जो यथायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है वापस लौट के वो करेगा ही करेगा, अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर चार समय है, इतनी विशेषता है कि आयु कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर साधिक एक पूर्व कोटि है, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय ने पूर्व कोटि की आयु बांधी, तो बंतर पूर्व कोटि पहले बांधी और दूसरे भाव में पूर्व कोटि के लास्ट में बांधी, तो वन एंड वन थर्ड पूर्व कोटि के लगभग कुछ कम, विशेषार्थ असंगियों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतर एकेंद्रियों की मुख्यता से कहा, वो चार घाती को भी एकेंद्रिय की मुख्यता से, इसलिए इन कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अनंत काल बन जाता है, नहीं नहीं उन्होंने एक इंद्रिय की मुख्यता से ने उसका बंध करने वाला संगी असंगी लिया पंचेंद्रिय, और एक इंद्रिय में गया है इसलिए उसका अंतर बताया, परंतु गोत्र कर्म में हमने बाद रखने का एक वायु का एक को लिया था उसकी अपेक्षा, हाँ परंतु हमने देखा था कि अग्नि का एक वायु का एक के जघन्य होगा, जहां नरक की बात घटित होती है, अभी हमने अभव्य में क्या देखा था, गोत्र कर्म का जघन्य कौन है, तो सातवें नरक का सम्यक तो क्या अभिमुख वाला लिया, यदि उसको छोड़ देते हैं तो जगन्य किसके होगा, तो सर्व विशुद्ध बादर अग्नि का एक वायु का। तो उस दो पर्यायों को छोड़कर भी एक इंद्रिय में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। ये तो हमने ऊपर लिखा था है ना। यहाँ तो असंगी में तो गोत्र कर्म का सर्व विशुद्ध अग्नि का एक वायु का एक लिया। इसी प्रकार अन्य कर्मों का अंतर भी अपने अपने स्वामित्व को ध्यान में लेकर घटित कर लेना चाहिए। मात्र आयु कर्म के अजगन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर लाते समय वह साधिक एक पूर्व कोटि प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की अपेक्षा ही यह अंतर प्राप्त हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं।
इतर
वही तो बताया। आपका प्रश्न है कि अग्नि का एक वायु का एक को छोड़कर अन्य पर्यायों में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, तो अनंत काल है, असंख्यात पुद्गल पर्याय। आहारक जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर काल ओघ के समान है। नितिन भाई, चार घाती का जघन्य का अंतर कितना होगा? हाँ, वो क्षपक में होगा, उसका अंतर नहीं है। और अजघन्य का उपशम से वहाँ अनाहारक हो जाएगा क्या? बीच में नहीं होगा। एक समय होता है ना, आहारक का आहारक रहा, उपशम श्रेणी में एक समय मरकर रुजु गति से देवगति में गए, तो एक समय का अंतर हो सकता है। नहीं, उनका क्या कहना था, एक समय कैसे होगा? तो बिना कारवां का युग के, यानी बिना मोड़ के वो जाएगा, तो आहारक का आहारक रहेगा, एक समय घटित होगा। वेगनी आयु और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। क्योंकि आहारक की काय स्थिति है, अभी हमारा शिविर हुआ था ना ये दिवाली में, दिवाली ने स्वामी जी के जन्म जयंती में, तो मंजू बहन ने हमारे उत्तर दिया था अंगुल का संख्या था भाग। अजगन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल ओघ के समान है। क्या है अजगन्य का? एक समय जगन्य अंतर और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्छ उपशम श्रेणी में, और आयु के भी, आयु का तो अलग लेना है, आयु के अजगन्य का जो हम आहारक में घटित करना है ना, आहारक का आहारक लेना है, तो साधिक तैत्य सागर भी होगा, क्योंकि रुजु गति से जाने वाला जीव लेना है। अजगन्य का एक समय से साधिक तैत्य सागर, एक समय के अंतर से, एक समय के लिए जगह नहीं किया और वापस जगह नहीं किया। जघन्य के लिए, जघन्य के लिए, यानी ये जरूरी नहीं कि आयु कर्म का जघन्य बांधे, परंतु उसने आहारक बनना, बने रहने का काल कितने अंगुल का संख्या होगा, असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। शुरुआत में जघन्य बांध दिया, बीच में जघन्य बांधी नहीं, अजघन्य बांधता रहा हर भव में, फिर लास्ट भव में उसमें फिर जघन्य बांधे, तो जघन्य का उत्कृष्ट अंतर हुआ। परंतु अजगण्य कोई भी आयु बंधे तो अजगण्य तो बंधेगी बंधेगी, तो इस भव में वंथर पूर्व कोटि पहले बांधी और फिर वो जाके नरक में या नरक में ले लेना हमको, या देव में भी लगा सकते हैं, तैतीस सागर के लास्ट में बांधी, प्रोवाइडेड वो रुजुगति से गया है, आहारक का आहारक रहा है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। ये कहाँ पर लेना अंगुल का असंख्यात भाग? हाँ बोलो, सातवें नरक के नार के लिए। और हमने ओघ में कितना देखा था?
कुछ
कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, वो अनंत काल है और ये असंख्यात काल है। अजगन्य अनुभाग बंध का अंतर काल ओघ के समान है। एक समय से अंतर श्रेणी में विशेषा आहारक की उत्कृष्ट काय स्थिति अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। इसी से यहाँ वेदनी आयु नाम एक कॉमा लगा ना आयु और नाम के बीच में, और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतरुक्त प्रमाण कहा है। काय स्थिति के प्रारंभ में और अंत में जघन्य स्थिति का बंध कराकर यह अंतर ले आवे, शेष कथन सुगम है। इस प्रकार अंतर काल समाप्त हुआ। हर्ष है ना, अभी नया कुछ शुरू हो जाएगा हर्ष के संदेह। पर मूल प्रकृतियों में इतना डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि सारी मूल प्रकृति तो बंद ही रही है। फिर जघन्य के साथ क्या क्या बनता है उसकी बात होगी। चलो यहीं रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे